मार्लेमेंटो सुधार 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों ने भी नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों को बहुत निराश किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अधिसंख्य प्रतिनिधियों का चुनाव अब भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होना था। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी प्रावधान था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 68 प्रतिनिधियों में से 36 सरकारी अधिकारी और 5 गैर सरकारी व्यक्ति नामांकित किए जाते थे। 27 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 6 का चुनाव बड़े जमींदार करते थे और 2 का चुनाव अंग्रेजी पूंजीपति। नए कानून ने सदस्यों को प्रस्ताव रखने और सवाल करने का अधिकार दिया। विभिन्न बजट प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार भी दिया गया, लेकिन इन सबके बावजूद काउंसिलों को व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था। यह महज सलाहकार संस्थाओं का काम करती थी। लोकतंत्र व स्वशासन की बात यहाँ नहीं उठाई जा सकती थी। इस तरह इन तमाम सुधारों के बावजूद फिरंगी हुकूमत का अलोकतांत्रिक विदेशी व शोषक चरित्र बरकरार रहा। मार्ले ने पार्लियामेंट में घोषणा की कि अगर कुछ लोग यह समझते हैं कि नए सुधारों के चलते प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदुस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो वे गलतफहमी में हैं। मार्लेमेंटो सुधारों का मूल मकसद राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना और मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काकर भारतीयों के बीच दिन ब दिन बढ़ती एकता को रोकना था। भारतीयों में एकता को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक घृणित चाल चली। निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जातीय व धार्मिक आधार पर किया गया। मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटें बनाई गई जहां मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इस कुटिल नीति के चलते यह जताने की कोशिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हित परस्पर मेल नहीं खाते। इस तरह अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाना एक ऐसा विष वृक्ष साबित हुआ जिसके चलते बाद में हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की फसल उग गई।